पाठ 39 अध्याय 28 जारी। हमने पिछले सप्ताह व्यवस्था विवरण का बहुत लंबा अध्याय 28 शुरू किया था और हम इसे इस सप्ताह समाप्त करेंगे। आराम से बैठो क्योंकि आज रात हमें बहुत कुछ करना है। पहला भाग जो कि पद 1 से 14 था, उसमें उन आशीषों का वर्णन किया गया है जो इज़राइल को प्रभु से प्राप्त होगी यदि वे उनकी बात सुनेंगे और उनका पालन करेंगे। इज़राइल द्वारा परमेश्वर की सुनने का सामान्य तरीका मूसा द्वारा सिखाई गई आज्ञाओं और नियमों को सीखना और फिर उनका पालन करना था। अक्सर हम आधुनिक ईसाई सोचते हैं कि यहोवा हमसे क्या चाहता है, यह निश्चित रूप से जानने के लिए हमें अपने जीवन में आने वाली अनगिनत परिस्थितियों के बारे में किसी प्रकार के व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रकाशन की आवश्यकता है। एक ऐसी बात जिसे अक्सर धर्मोपदेशों में परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा की तलाश के रूप में संदर्भित किया जाता है। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा से संबंधित लगभग सभी बातें परमेश्वर के वचन में पहले से ही स्थापित कर दी गई हैं और इसलिए हमें अपने अधिकांश उत्तरों के लिए उसी की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी आशा आमतौर पर यह होती है कि हम कोई ऐसा रास्ता खोज लें जिससे हम उस काम से बच सकें जिसे हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस अध्याय का शेष भाग आशीर्वाद के विपरीत से संबंधित है, जिसे श्राप कहा जाता है। इन श्रापों के बारे में सोचना एक अच्छा तरीका है कि इन्हें ईश्वरीय धमकियां माना जाए। वास्तव में प्राचीन ऋषियों और बाद में रब्बियों ने व्यवस्था विवरण 28 में श्रापों की इस सूची को एक शीर्षक दिया है, तोकेहा, जिसका अर्थ है चेतावनी। और चेतावनी यह है कि जिस तरह आज्ञाकारिता इज़राइल पर संभावित आशीर्वादों की एक अच्छी तरह से परिभाषित श्रृंखला लाती है, उसी तरह अवज्ञा भी इज़राइल पर संभावित श्रापों की एक अच्छी तरह से परिभाषित श्रृंखला लाती है। परिणाम इज़राइल के ऊपर। हमने पिछले सप्ताह इन श्रापों के बारे में पढ़ा था और अब हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन आप श्रापों की इस सूची के लिए 15 से शुरू होने वाली पदों का संदर्भ ले सकते हैं। मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप अपनी बाइबल खोलकर व्यवस्था विवरण 28 पढ़ें ताकि आप भ्रमित ना हो। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूं कि हम कुछ अपरिवर्तनीय ईश्वर सिद्धांतों से टकराने जा रहे हैं जिन्हें हमारे युग में व्यावहारिक रूप से सिद्धांतबद्ध कर दिया गया है, और इसलिए यह कुछ ऐसी चीजों को चुनौती दे सकता है जिन्हें आपने हमेशा यह मानकर चला है कि वे आप पर लागू नहीं होती। याद रखें कि यहां जो हो रहा है वह यह है कि मूसा दूसरी पीढ़ी के निर्गमन को सिनाई पर्वत वाचा के नियमों को फिर से सिखा रहा है और उन नियमों को धर्मोपदेश शैली में समझा रहा है। निर्गमन की पहली पीढ़ी अब मर चुकी है और उन पर ईश्वर के श्राप के परिणाम स्वरूप दफन हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने निर्जन यात्रा के आरंभ में ही आगे बढ़ने और वादा किए गए देश को लेने से इनकार कर दिया था। यह वह पहली पीढ़ी थी जो सिनाई पर्वत के शिखर से धुआं उठते देखकर कांप उठी थी। परमेश्वर की गरगराहट भरी आवाज सुनी जिसने उन्हें सहज रूप से अपने घुटनों पर गिरने और डर से चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया। मूसा को वाचा दिए जाने के गवाह बने और सर्वसम्मति से घोषणा की कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वे करेंगे। 38 साल बाद मूसा अब उसी वाचा की शर्तों को दूसरी पीढ़ी मिस्र से बाहर निकलने वालों के बेटे और बेटियां के सामने पेश कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि उन्हें अपने पूर्वजों की तरह ही इसकी रातों को स्वीकार करने की शपथ लेनी होगी। यहां एक महान सिद्धांत है। हम में से प्रत्येक का उद्धार इस बात से नहीं होता कि हमारे पिता और माता ने क्या सहमति दी और क्या किया, बल्कि इस बात से होता है कि हम क्या सहमति देते हैं और क्या करते हैं। हम सबसे शानदार विश्वासी ईसाई घर में पले बढ़े हो सकते हैं, अपने माता पिता के साथ चर्च जा सकते हैं, सामूहिक प्रार्थनाओं और संगति में शामिल हो सकते हैं और सभी ईसाई भाषा बोल सकते हैं, और जब हमारे व्यक्तिगत उद्धार की बात आती है तो यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। हम में से प्रत्येक को उस वाचा के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करनी चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम वाचा के सदस्य नहीं बनते हैं और हम इसकी रातों से बाहर रहते हैं।
ये इसराइल के लिए ऐसा ही था, ये आज भी हमारे लिए ऐसा ही है।
पहले छह श्राप प्रकृति में सामान्य हैं और पद एक से छह में सूचीबद्ध छह आशीर्वादों के बिल्कुल विपरीत हैं। पद तीन पद सोलह से मेल खाता है, जबकि इसराइल द्वारा सहमत वाचा की शर्तों मोजेक वाचा का पालन करने से आपको आशीर्वाद मिलता है, चाहे आप शहर में हो या देहात में। अवज्ञा करने से आप शहर या देहात में श्राप पाते हैं। पद चार फलदायी होना पद 18 से मेल खाता है, बहुतायत का आशीर्वाद पद 18 से मेल खाता है, बहुतायत को रोके रखना। पद पांच पद 17 से मेल खाता है और इसी तरह। स्पष्ट सबक क्या है? आज्ञाकारिता और अवज्ञा विपरीत परिणाम लाती है। पद 20 से शुरू होकर श्रापों का विस्तार किया गया है और उन्हें और अधिक विशिष्ट बनाया गया है। आपके बाइबल अनुवाद के आधार पर तीन वर्णनात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है कि ईश्वर विद्रोही इसराइलियों या इसराइल के विद्रोही राष्ट्र को हराने के लिए क्या करेगा, जो कुछ भी वे पूरा करने की कोशिश करते हैं। सूची का अनुवाद जो मैं सबसे अधिक उपयोग करना पसंद करता हूं वह है कि यहोवा श्राप बोझ और भ्रम पैदा करेगा, और मुझे ये तीन शब्द दूसरों से बेहतर इसलिए लगते हैं क्योंकि वे सभी एक ही अक्षर सी से शुरू होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही दर्शाता है जैसे इब्रानी में पढ़ा जाता है, क्योंकि इब्रानी में तीन वर्णनात्मक शब्दों की सूची भी सभी एक ही इब्रानी अक्षर एक मेम से शुरू होती है, और अंग्रेजी की तरह ही ऐसा करने का उद्देश्य इसे और अधिक यादगार बनाना है। तीन का पहला परिणाम इब्रानी में मे एराह है, जिसका अर्थ है अभिश्राप अर्थात आपदा को सहना। दूसरा है मेहुमाह और इसका अर्थ है भ्रम, और यह आमतौर पर युद्ध और तीव्र सामाजिक उथल पुथल के कारण होने वाली घबराहट और अराजकता को संदर्भित करता है। तीसरा है मिगरेट, इसका अर्थ है बोझ भारी बोझ। यह अपने साथ निराशा और प्रगति करने में असमर्थता का विचार लेकर आता है, और जो इन परिस्थितियों को जन्म देता है वह यह है कि इसराइल ने प्रभु को त्याग कर बहुत बड़ी बुराई की है। इसका क्या मतलब है प्रभु को त्यागना? सी जे बी का कहना है कि इसका मतलब है ईश्वर को त्यागना। फिर भी जब हम इसराइल के निर्वासन और दंडों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सामान्य तौर पर उन्होंने अपने मन में परमेश्वर की आराधना करना या यहोवा को इसराइल के परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना बंद नहीं किया। हम इसराइल को यह कहते हुए नहीं पाते कि यहोवा नाम का कोई परमेश्वर नहीं है या चलो चलें और उसकी अवज्ञा करें। इसके बजाय समय के साथ उन्होंने यहोवा पर टिके रहते हुए कुछ अन्य देवताओं को भी जोड़ दिया। उन्होंने मूसा के नियमों और आदेशों को अपने सुख और इच्छाओं के अनुसार बदलने के लिए कारण ढूंढे, या फिर जो नियम उन्हें पसंद थे उनका पालन किया और जो सुविधाजनक नहीं थे उन्हें अनदेखा किया। मुद्दा यह है कि परमेश्वर को छोड़ना या त्यागने का मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय में उसकी पूजा करता था अब वह उसे पूरी तरह से त्याग देता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति वाचा की शर्तों से सहमत था अब वह उन शर्तों को तोड़ रहा है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर को त्यागने या त्यागने का मतलब केवल उसे मुंह मोड़ना है, उसकी आज्ञा का पालन करना और उसके मार्गों का अनुसरण करना छोड़ देना। इसका मतलब है भटक जाना और अपनी मर्जी से काम करना, प्रभु को ताक पर रख देना और अपने जीवन को दुनिया की उन चीजों से भर देना जिनका उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में कोई स्थान नहीं है। 3000 साल पहले इसका यही मतलब था और आज भी एक आस्तिक के लिए इसका यही मतलब है। पद 21 से शुरू करते हुए हम देखते हैं कि श्रापों की तीन श्रेणियां उभरती हैं, बीमारी सूखा और युद्ध से जुड़े श्राप। मूसा ने इसराइल को जिस पहली श्रेणी के बारे में बताया वह है महामारी घातक बीमारी। तीन इब्रानी शब्दों शाहफेट कद्दाहाट और दल्लेकेट का उपयोग मानव रोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि इनके आधुनिक समकक्ष क्या हैं। इसलिए हम व्यावहारिक रूप से देखेंगे कि प्रत्येक बाइबल संस्करण की अपनी सूची है, वे जो भी हैं वे दर्दनाक और घातक हैं। अगले कुछ शब्द मनुष्यों या फसलों को संदर्भित कर सकते हैं, और या तो इसका मतलब है कि मनुष्य
जलते हैं निस्संदेह बुखार का उल्लेख करते हैं, या यह भीषण गर्मी हो सकती है जो फसलों को नष्ट कर देती है। इसके बाद पद 23 में कहा गया है कि आकाश या स्वर्ग पीतल जैसा होगा और धरती लोहे जैसी। यह बारिश की कमी और इसके परिणाम स्वरूप जमीन के अत्यधिक सूखेपन को संदर्भित करता है। नमी की बारिश के बजाय सूखी धरती के कारण धूल की बारिश होगी, जैसा कि हमारे देश ने 20वीं सदी के आरंभ में डस्ट बाउल संकट में देखा था और हेमिंग्वे के महान उपन्यास द ग्रेप्स ऑन एफ रैथ में याद किया गया है। युद्ध का पहलू भी जोरा गया है, प्रभु जिसने इसराइल के आज्ञाकारी होने पर इसराइल के शत्रुओं को परास्त करने का वादा किया है, अब इसराइल को उसके शत्रुओं के हाथों अवज्ञा के लिए परास्त करेगा। एक ही रास्ते से मार्च करना लेकिन 7 रास्तों से भागना, वाक्यांश एक मुहावरा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब वे एक उचित रूप से संगठित युद्ध रेखा में युद्ध के लिए दिखाई देंगे तो वे बिखर जाएंगे और अपने जीवन के लिए हर दिशा में भागेंगे जब उनका दुश्मन उन पर हावी हो जाएगा। वास्तव में हार इतनी व्यापक होगी कि जो लोग इसके बारे में सुनेंगे वे इसराइल को एक भय के रूप में देखेंगे बजाय उस सम्मानजनक भय के जिसे परमेश्वर ने पद 10 में आशीर्वाद के रूप में वादा किया है। यह याकूब के बेटों द्वारा शेखेम के दुर्बल पुरुषों पर कायरतापूर्ण हमले की याद दिलाता है जो राजा के बेटे द्वारा याकूब की बेटी दीना के साथ बलात्कार करने के जवाब में पूरी तरह से अनुचित प्रतिशोध था। याकूब ने अपने बेटों से कहा कि उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप वह अब आसपास के गोत्रों और राष्ट्रों के नथुने में एक बदबू बन गया है। यह भय कहने का एक और तरीका है, लेकिन पूरी ईमानदारी से यह लेबनान और इसराइल के बीच हाल ही में हुए युद्ध की याद दिलाता है जिसमें इसराइल को हराया गया और अपमानित किया गया और अरब जगत में इसराइल की सैन्य क्षमता के लिए बहुत सम्मान और भय पश्चिमी दुनिया में एक वास्तविक चिंता में बदल गया है कि क्या इसराइल वास्तव में अब खुद का बचाव कर सकता है और आतंक के खिलाफ युद्ध में एक उपयोगी सहयोगी बन सकता है। इसराइल एक बार फिर दुनिया के लिए एक भयावह बनने की राह पर है और यह इसराइल पर अंतिम समय में होने वाले आक्रमण में भूमिका निभाएंगे। लेकिन यहोवा कहता है कि इसराइल के खिलाफ श्राप और भी बदतर हो जाएंगे। मृत इब्रानी सैनिकों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि बचे हुए लोग उन्हें दफनाने में भी सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उनकी लाशें मैला ढोने वाले पक्षियों और जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगी। हालांकि यह हमारे लिए एक बहुत ही घिनौनी तस्वीर है, लेकिन यह इब्रानी लोगों के दिमाग में जो असली मुद्दा था उसकी तुलना में बहुत कम है। अगर उन्हें ठीक से दफनाया नहीं गया तो उनकी आत्माओं ने जो भी जीवन जिया होगा वह कभी नहीं होगा, उनका आध्यात्मिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर पद 27 से एक विषय शुरू होता है जो इस अध्याय के शेष भाग में विस्तृत होगा, मिस्र।
अपने माता पिता के विपरीत पलायन की यह दूसरी पीढ़ी ईश्वर द्वारा मिस्र पर किए गए भयानक प्रहारों की गवाह नहीं थी। उन्होंने निश्चित रूप से इन आपदाओं के प्रत्यक्षदर्शी खातों के बारे में सुना था जब वे कैंप फायर के चारों ओर बैठे थे, लेकिन यहां मूसा ने उनके लिए उन भयावहताओं की एक तस्वीर पेश करना शुरू कर दिया है जो मिस्र ने अनुभव की थी। और जबकि ईश्वर ने इसराइल को मिस्र से अलग कर दिया और केवल मिस्र को ही इन भयावहताओं को सहने की अनुमति दी, इसराइल को भी उन्हीं भयावहताओं को सहना पड़ेगा यदि वे यहोवा के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि वे उन मुख्य रूप से त्वचा रोगों से पीड़ित होने की उम्मीद कर सकते हैं जिनसे आप केवल यही चाहते हैं कि आप मर जाएं, लेकिन इसके बजाय वे आपके जीवन भर बिना किसी राहत या आशा के आपसे चिपके रहते हैं। उन त्वचा रोगों में से एक का शाब्दिक अनुवाद बुरे फोरे के रूप में किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह वही शब्द है जिसका उपयोग उस विनाशकारी त्वचा रोग का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसे ईश्वर ने अय्यूब को होने दिया था। लेकिन केवल शारीरिक और बाहरी दिखने वाले कष्ट ही इसका अंत नहीं होंगे। परमेश्वर लोगों के दिमाग को इस तरह से श्राप देंगे कि वे मनोभ्रंश से पीड़ित होंगे। इस्तेमाल किए गए शब्द पागलपन, अंधापन और पूरी तरह से भ्रम है। यह मनोवैज्ञानिक पीड़ा मानसिक बीमारी है
जिसका यहां वर्णन किया जा रहा है, और जहां हम अंधापन शब्द देखते हैं उसका मतलब दृष्टि की हानि नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अब सत्य को समझने या देखने में सक्षम नहीं होगा। इसका उद्देश्य उन्हें मिस्र की याद दिलाना है, जब परमेश्वर ने मिस्र पर इतना घना अंधकार ला दिया था कि लोगों ने सचमुच अपना दिमाग खो दिया था, न कि केवल अपना रास्ता। ये एक दुष्ट आध्यात्मिक अंधकार था जो मिस्र पर इस तरह से उतरा था कि न तो सूर्य का प्रकाश और न ही परमेश्वर का ज्ञान उन पर चमकता था। अनिवार्य रूप से यह परमेश्वर की उपस्थिति की अनुपस्थिति थी जिसे खतरा हो रहा था। यह एक बहुत ही समान स्थिति है जिसका सामना गैर विश्वासियों को अनंत काल तक करना पड़ेगा। क्या आप कभी ऐसी स्थिति या स्थान में रहे हैं जहां आपको घोर बुराई का आभास हुआ हो? क्या आपने ऐसी अनुभूति का अनुभव किया है जिसके कारण आपकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए हों, फिर भी आप कुछ भी नहीं देख पाए या यह नहीं बता पाए कि वह क्या है? क्या आप कभी ऐसी जगह पर रहे हैं जहां आपको लगा हो कि ईश्वर का प्रकाश प्रवेश नहीं कर रहा है या प्रकाशित नहीं हो रहा है, और इसके बजाय केवल अंधकार और मृत्यु है, और आप बस यही चाहते थे कि वहां से भाग जाएं? यही वह मानसिक अंधापन है जिसका यहां वर्णन किया जा रहा है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि भागना काम नहीं करेगा, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे यह आपका पीछा करेगा। मैं आपके लिए पद 30 से 35 का सार प्रस्तुत करता हूं। अब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब काम जो आप पहले किया करते थे और जो अच्छे निकले अब नहीं करते। आपके सबसे बुरे डर तब सच हो जाएंगे जब कल्पना करना भी असंभव हो जाएगा। कोई अज्ञात दुश्मन आपके भोजन और आजीविका के स्रोतों को नष्ट कर देगा। आपके बेटे और बेटियां विदेशी जगहों पर चले जाएंगे जहां कुछ गुलाम बन जाएंगे और बाकी मर जाएंगे। तर्क कहता है कि यह अंततः समाप्त हो जाएगा, जैसा कि आमतौर पर सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग आपसे नफरत करेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों। आपने जो कुछ भी कभी ईमानदारी से कमाया है और जिसके लिए आपने काम किया है, वह अचानक किसी और की संपत्ति बन जाता है। स्थिति की अराजकता और पागलपन से निपटने में सक्षम न होने के तनाव के परिणाम स्वरूप अंततः आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। समझिए कि इस समय तक इसराइल को जिस चीज की धमकी दी गई थी वह सब इसराइल की भूमि के भीतर ही होने वाली थी। परमेश्वर के क्रोध से इसराइलियों पर आने वाली इन भयानक चीजों का भूत तब आएगा जब वे अपने देश में होंगे। लेकिन फिर जब यह और भी बदतर नहीं हो सकता था, तो अकल्पनीय घटना घटित होती है, निर्वासन। पद 36 उन रहस्यमय पदों में से एक है जिनके बारे में मैंने इस चार अध्याय वाले खंड की शुरुआत में बात की थी, क्योंकि पूरा स्वर अचानक काल्पनिक होने से बदल जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। भविष्यवाणी और अपरिहार्य होने के लिए ऐसा होने वाला है। यह एक संभावना से एक आश्वासन में बदल जाता है। इसराइल को वादा किए गए देश से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वे यहोवा के खिलाफ विद्रोह करेंगे और इन श्रापों को अपने ऊपर लाएंगे। यह भी ध्यान दें कि इसराइल के अपने ऊपर शासन करने के लिए राजा को स्थापित करने के विचार से 300 साल पहले प्रभु कहते हैं कि वह इसराइलियों और उनके राजा को एक ऐसे राष्ट्र में ले जाएगा जो उनके पूर्वजों के लिए अज्ञात था, एक ऐसा राष्ट्र जो मूल रूप से कुलपिताओं के दिनों में अस्तित्व में नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल का दूसरे देश में निर्वासन वास्तव में हुआ था। हम पाएंगे कि यशायाह और यिर्मयाह ने व्यवस्था विवरण 28 के इन श्रापों को पहले इसराइल को अपने तरीके बदलने की चेतावनी देने के लिए और फिर बाद में उन्हें याद दिलाने के लिए उद्धृत किया कि उनके साथ ये विपत्तियां क्यों हुई। यह जानकर कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि इसराइल की अवज्ञा और याहवे के प्रति वफादारी की कमी के कारण वे लगभग 80 वर्षों तक ही एक संप्रभु राष्ट्र थे। यह सही है, इसराइल का आधुनिक राज्य जो बमुश्किल 60 वर्ष से अधिक पुराना है, वह उस समय की कुल अवधि के करीब नहीं है जब इसराइल अपने पूरे इतिहास में एक एकीकृत राष्ट्र था। राजा दाऊद और सुलेमान के अधीन इसराइल फला फूला और 12 गोत्र एक झंडे के नीचे रहती थी, लेकिन सुलेमान की मृत्यु के 3 या 4 साल के भीतर इसराइल गृह युद्ध में पड़ गया और 2 राज्यों में विभाजित हो गया, जिनका उल्लेख बाइबल में कई तरीकों से किया गया है। इन पदनामों में उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य शामिल हैं। उत्तरी राज्य को एप्रैम इसराइल भी कहा जाता था और दक्षिणी राज्य को यहूदा कहा जाता था। उत्तरी राज्य में इसराइल की 12 गोत्रों में से 10 शामिल थीं और यह एप्रैम इसराइल का उत्तरी राज्य था जिसे सबसे पहले निर्वासित किया गया था। लगभग 725 ईसा पूर्व शक्तिशाली असीरियन साम्राज्य, जो लगभग 1 दशक से एप्रैम इसराइल के क्षेत्र को नष्ट कर रहा था, को यहोवा द्वारा इब्रानियों पर न्याय के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था और असीरियन ने उत्तरी राज्य पर अपनी विजय पूरी कर ली। एप्रैम इसराइल की उन 10 गोत्रों को भूमि से हटा दिया गया और पूरे विशाल असीरियन साम्राज्य में बिखेर दिया गया और उनमें से अधिकांश लोग उन संस्कृतियों में समाहित हो गए जिन्होंने असीरिया का निर्माण किया। यहीं से 10 खोई हुई गोत्रों की किंवदंती शुरू हुई।
लगभग 135 साल बाद एक नया थौसिया आया है बेबीलोन। दक्षिणी राज्य ही इसराइल का बचा हुआ हिस्सा था जब तक कि 596 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण नहीं कर दिया, यरूशलेम को नष्ट कर दिया और बहुत सी आबादी, सबसे अधिक विद्वान और उपयोगी लोगों से शुरू करके, को बेबीलोन ले गया। यह दूसरा निर्वासन था। परमेश्वर के लोगों का तीसरा और अंतिम निर्वासन 70 ईसवी पू में दर्ज किया गया है, क्योंकि यही वह समय था जब रोमियों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और मंदिर को जला दिया था। आज हम आधुनिक इसराइल राज्य के फिर से उभरने में जो देखते हैं वह यहूदा के लोगों की रोमन निर्वासन से वापसी है, दक्षिणी राज्य। भविष्यवाणियों के अनुसार उत्तरी राज्य को भी वापस लौटना चाहिए और यह एक बढ़ती हुई सीमा तक हो रहा है।
व्यवस्था विवरण पर वापस आते हैं। निर्वासन के स्थान पर इजरायली श्रेष्ठ मेजबान से निम्नतर विदेशी बन जाएंगे। वे यहोवा की नहीं बल्कि अन्य देवताओं की जरूरतों को पूरा करेंगे और निर्वासन के इस स्थान पर वे अंगूर के बाग लगाएंगे और फसल बोएंगे, लेकिन टिड्डे यह सब नष्ट कर देंगे। यहां तक कि शराब बनाने और पीने से उन्हें जो थोड़ी बहुत खुशी मिलती थी वह भी उनसे छीन ली जाती है। फिर से ध्यान दें कि वह स्थान जहां इब्रानियों पर परमेश्वर के ये सभी अभिशाप हो रहे थे बदल गया है। वे इसराइल में इन सभी विपत्तियों का अनुभव कर रहे थे, लेकिन अब वे अपने निर्वासन के बाद भी किसी अन्य देश में इनका अनुभव कर रहे हैं। वादा किए गए देश से बाहर निकाल दिया जाना अभिशापों का अंत नहीं था। वे जहां भी गए अभिशाप उनके साथ रहे।
ये शायद सबसे बड़ी सीख है जो हम सभी सीख सकते हैं। परमेश्वर से भागना नहीं है, केवल उसके पास भागना है। योना इस सीख को जीवन में लाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अपनी बाइबल में योना की पुस्तक का अध्याय 1 खोलिए।
योना अध्याय 1 और 2 पढ़ें।
मैं मध्य पूर्व की प्राचीन विश्वास प्रणालियों पर चर्चा करने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको हमारे साथ अध्ययन के वर्षों के दौरान इस विषय पर बहुत सी जानकारी दी है। मुझे बस आपकी यादों को ताजा करने की अनुमति दें कि यह सामान्य ज्ञान माना जाता था कि एक देवी या देवता पृथ्वी पर रहते हैं या अक्सर उसके ऊपर आकाश में, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य रहते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक राष्ट्र के लोगों के अपने देवी देवता थे जो उस राष्ट्र की सीमाओं के भीतर काम करते थे और उनकी शक्तियां उसी तक सीमित थीं। जब कोई व्यक्ति सीमा पार करके दूसरे राष्ट्र में प्रवेश करता था तो देवताओं का एक अलग समूह उस पर कब्जा कर लेता था। इसे स्वीकार करना जितना भी कठिन हो, बाइबल के इब्रानियों ने इस पर विश्वास करना जारी रखा और यह पवित्र शास्त्र में अच्छी तरह से प्रमाणित है, भले ही उनके पास तोरह और यहोवा थे। योना को यह कठिन तरीके से सीखना पड़ा कि दुनिया जो दावा करती है कि वह राजनीतिक रूप से सही और सामान्य ज्ञान है, वह जरूरी नहीं कि सच हो।
यहोवा ने योना को नीनवे जाकर इसराइल के परमेश्वर के बारे में बताने का काम सौंपा। वह वहां नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। वह इसराइल के क्षेत्र को छोड़ देगा जहां यहोवा की शक्ति थी और तर्शीश जाएगा जहां यहोवा का अस्तित्व नहीं था या कम से कम उसका कोई आध्यात्मिक अधिकार नहीं था। समझे, योना इसराइल के परमेश्वर का त्याग नहीं कर रहा था, वह केवल यहोवा के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से भाग रहा था, या ऐसा उसने सोचा था। योना अध्याय 2 योना के महान एहसास के बारे में बताता है कि आप ईश्वर से बच नहीं सकते, क्योंकि वह हर जगह है और उसका अधिकार सार्वभौमिक है। मुझे लगता है कि योना ने कभी व्यवस्था विवरण 28 नहीं पढ़ा था, क्योंकि यह इस बात को सबसे जोरदार तरीके से बताता है। व्यवस्था विवरण 28 में यहोवा यह स्पष्ट कर रहा था कि इब्रानियों को चाहे जहां भी जाना पड़े, श्राप उनके साथ होंगे, क्योंकि यहोवा अभी भी उनके साथ था। ईश्वर से कोई बच नहीं सकता।
व्यवस्था विवरण 28 43 में इसराइलियों के जीवन पर श्रापों के एक और पहलू पर परमेश्वर द्वारा कदम रखा गया है, उनकी वित्तीय स्थिति। एक पूर्ण भूमिका उलट हो रही है। विदेशी जो दीन और जरूरतमंद होकर इसराइल आए थे, अब इसराइलियों से ऊंचे और धनी हो गए हैं। ईश्वर ने इसराइल को मानवीय चिंताओं के कारण विदेशियों को उधार देने का आदेश दिया था। अब अपनी श्रापित अवस्था में इसराइल उन्हीं विदेशियों से उधार लेने वाला बन जाएगा। यह अपमान असहनीय है। बीमारियों, मनोवैज्ञानिक आघात और अभाव के अलावा दैवीय खतरों की अगली श्रृंखला में अन्य राष्ट्रों द्वारा विजय शामिल है। इसका परिणाम भुखमरी, गरीबी और इन राष्ट्रों और उनके देवताओं की दास्ता होगी।
श्रापों के इस अगले समूह का कारण श्रापों की अन्य सभी श्रेणियों के समान ही है। इसराइल ने परमेश्वर की अवज्ञा की, या अधिक शाब्दिक रूप से इसराइल ने परमेश्वर को क्षमा नहीं किया। इसराइल ने न तो सुना और न ही आज्ञा का पालन किया। अगर मैं आधुनिक चर्च पर जादू की छड़ी घुमा सकता और कुछ बदल सकता, तो मुझे लगता है कि यह हमारे विश्वास में आज्ञा का पालन शब्द को फिर से शामिल करना होगा। किसी तरह आज्ञाकारिता को अब अप्रासंगिक माना जाता है। हमने अपना अग्नि बीमा खरीद लिया है, इसलिए अगर हम माचिस से खेलते हैं और घर जला देते हैं तो कौन परवाह करता है। कई लोगों ने मुझे समझाया है कि वे आज्ञाकारिता को व्यवस्थावाद के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मसीह के आगमन के बाद से हमें जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह है प्रेम करना। प्रेम ने आज्ञाकारिता की जगह ले ली है, ठीक वैसे ही जैसे नए नियम ने पुराने नियम की जगह ले ली है। फिर भी शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना उनके प्रति आज्ञाकारी होना है। पद 46 हमें मित्र के विषय का एक और संदर्भ देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इन अभिशापों से गुजर रहे थे, तो आपको इस पर नजर रखनी चाहिए। मूसा कहता है कि ये कभी न खत्म होने वाली राष्ट्रीय आपदाएं और भाग्य परिवर्तन हमेशा के लिए इसराइल के खिलाफ एक संकेत और आश्चर्य के रूप में काम करेंगे कि उन्होंने परमेश्वर की सेवा नहीं की। यह वही वाक्यांश है जिसका उपयोग मिस्र पर 10 विपत्तियों के उद्देश्य को समझाने के लिए किया गया था। मुझे यहां रुककर देखना चाहिए कि क्या मिस्र का यह संदर्भ स्पष्ट हो रहा है। मूलतः जो हो रहा है वह यह है कि मिस्र से इसराइल का उद्धार समाप्त हो रहा है। परमेश्वर इसराइल की स्थिति और दशा को उलट रहा है और उन्हें मिस्र और गुलामी में वापस भेज रहा है, क्योंकि इसराइल वाचा की शर्तों को तोड़ कर उसे अस्वीकार कर रहा है।
प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना और उसमें कोई आनंद न लेना, छुटकारे का करना और आज्ञाकारिता प्रदर्शित करके कृतज्ञ न होना, परमेश्वर के श्रापों को आमंत्रित करना है। यदि यह नहीं तो इससे बड़ी और क्या शिक्षा दी जा रही है।
मैं इस बात को दृढ़ता से नहीं कह सकता कि व्यवस्था विवरण 28 में हम जिस इसराइल पर श्राप के बारे में पढ़ रहे हैं वह परमेश्वर द्वारा इसराइल के उद्धार के इतिहास को उलटने की धमकी है। वह उन्हें मिस्र से बाहर लाया जहां वे महान शत्रु की सेवा करते थे, और फिर उसने उन्हें छुराया और उन्हें अपना वचन तो रह दिया, लेकिन चूंकि समय के साथ उन्होंने उसके प्रेम और उसकी आज्ञाओं को अस्वीकार कर दिया, इसलिए वे अनिवार्य रूप से यहोवा का त्याग कर रहे हैं। इसलिए उन्हें एक बार फिर दास के रूप में शत्रु की सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पवित्रता की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को खो देंगे जो परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की थी। साथ ही वे आशीर्वाद जो मूसा की वाचा में व्यक्त किए गए थे। ये कितनी बड़ी त्रासदी है।
लेकिन इससे एक बहुत ही कठिन मुद्दा भी उठता है जिससे चर्च सदियों से जूझ रहा है और चर्च के अलग अलग हिस्से अलग अलग समाधान लेकर आए हैं। मुद्दा यह है कि एक बार जब हम छुरा लिए गए तो क्या हम आज मिस्र में वापस जा सकते हैं? यानी क्या कोई व्यक्ति जो मसीहा यीशु को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है वह उस निष्ठा को त्याग सकता है और अपने व्यक्तिगत उद्धार के इतिहास को उलट सकता है? हम निश्चित रूप से उस बहुत ही कठिन प्रश्न का कोई नया पहलू नहीं खोज पाएंगे जिसने मसीह के शरीर के भीतर काफी विभाजन पैदा किया है, लेकिन दूसरी ओर जब तोरह में एक निश्चित पैटर्न निर्धारित किया गया है तो मैं बस दूसरी तरफ नहीं देख सकता।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नया नियम उन लोगों की चेतावनियों और उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने एक समय में यीशु के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की थी और फिर या तो उसे त्याग दिया या इस हद तक दूर चले गए कि वे स्वयं को पुनः मिस्र में पाते हैं। प्रभु ने उन्हें पुनः एक दुष्ट स्वामी की दासता में छोड़ दिया।
क्या आपको यीशु का बीजों का दृष्टांत याद है जो लोगों को सिखाए जा रहे सुसमाचार का एक रूपक था और जिसके अलग अलग परिणाम थे? लूका 8:13। और जो पथरीली भूमि पर गिरे ये वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन ग्रहण करते हैं, पर झरन पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं।
इस अंश में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला यह समझना है कि विमुख होना वाक्यांश का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति धर्म त्यागी बन गया है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति में अब इतना भरोसा नहीं है कि उसे परमेश्वर के अनुयायियों में गिना जा सके। यह दुर्व्यवहार या पाप करने का उल्लेख नहीं कर रहा है। दूसरा, बहुत से आधुनिक चर्च सिद्धांत इस शास्त्र को अनदेखा करते हैं और कहते हैं कि जो लोग कुछ समय के लिए विश्वास करते थे वास्तव में कभी विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे ढोंगी थे। न केवल ये ऐसा नहीं है जो इसमें कहा गया है, बल्कि आपको नए नियम में कहीं भी उन लोगों का कोई संदर्भ नहीं मिलेगा जो विश्वास से विमुख हो गए थे और जिन्होंने वास्तव में कभी विश्वास नहीं किया था। परिभाषा के अनुसार आप किसी ऐसी चीज से विमुख नहीं हो सकते जो आपके पास कभी नहीं थी। विमुख होने का अनिवार्य रूप से एक या दूसरे तरीके से विश्वास को छोड़ना है।
रोमियो 11:22। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कठोरता को देखो, जो भटक गए उनके लिए कठोरता है, परंतु तुम्हारे लिए परमेश्वर की कृपा है यदि तुम उस कृपा में बने रहो, नहीं तो तुम भी काट डाले जाओगे।
यहां वाचक की अच्छी पुरानी मोजेक अगर तो सशर्त प्रकृति पर ध्यान दें। यदि आप उसकी दयालुता में बने रहते हैं तो आप जैतून के पैर पर एक शाखा की तरह झुर्रे रहेंगे। हमारी नई वाचा एक सशर्त वाचा है। शर्त यह नहीं है कि हमें पूरी तरह से व्यवहार करना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें विश्वास पर भरोसा करना चाहिए और विश्वास में बने रहना चाहिए। या यदि हम उस चीज को त्याग देते हैं जिसे हम सत्य मानते हैं तो हम अपने विश्वास के स्रोत ईश्वर से कट जाएंगे। गलातियों 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर से धर्मी ठहरना चाहते हो तुम मसीहा से अलग हो गए हो, तुम परमेश्वर की कृपा से दूर हो गए हो।
संत पौलुस के दिनों में ऐसे लोग थे और आज भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि व्यवस्था का पालन करना और मसीहा पर भरोसा करना दोनों ही मोक्ष के बराबर हैं। न केवल यह सच नहीं है बल्कि एक दूसरे को रद्द कर देता है। अगर हम व्यवस्था का पालन करने के आत्म औचित्य को मसीह द्वारा हमारे लिए औचित्य के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी औचित्य के साथ समाप्त नहीं होते हैं। इसे यीशु द्वारा हमारे औचित्य के साथ भ्रमित न करें और फिर हर विश्वासी की ओर से इस तरह के अत्यधिक अनुग्रह के लिए उचित प्रतिक्रिया में परमेश्वर के सभी वचनों के प्रति हमारा आज्ञाकारी होना। प्रकाशित वाक्य 2:4, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना वह पहला प्रेम खो दिया है। इसलिए याद करो कि गिरने से पहले तुम कहां थे, इस पाप से फिरो और वही करो जो तुम पहले करते थे, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे मेनोराह को उसके स्थान से हटा दूंगा अगर तुम अपने पाप से नहीं फिरे। आपका मेनोरा दीपक हटा दिया जाना, आपके ज्ञान को खोना है। यीशु हमारा ज्ञान है और यहां वह हमारे बीच से खुद को हटाने की धमकी दे रहा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं गलत समझा जाना या गलत तरीके से उद्धृत किया जाना नहीं चाहता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति और किसी भी तरह का कोई भी आध्यात्मिक प्राणी कभी भी जबरदस्ती और आपकी इच्छा के विरुद्ध यीशु मसीह में आपके उद्धार को नहीं हटा सकता है। लेकिन यीशु स्वयं यहां प्रकाशित वाक्य में इसे उन लोगों से दूर कर देता है जिन्होंने पहले प्यार किया और विश्वास किया, लेकिन अपनी इच्छा से रुक गए और पाप में वापस आ गए। उन्होंने उसके लिए अपना प्यार खो दिया।
पहला तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग उससे दूर हो जाएंगे। विश्वास, धोखेबाज आत्माओं और राक्षसों के सिद्धांतों पर ध्यान देना, और यहां पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे युग अंतिम समय में कुछ विश्वासी विश्वास से दूर हो जाएंगे। यह न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य भी है कि कुछ ईसाई अपने विश्वास से दूर हो जाएंगे और इसके बजाय मनुष्यों द्वारा बनाए गए कपटपूर्ण सिद्धांतों में अपना विश्वास रखेंगे। यह विचार कि एक बार जब हम मसीहा पर भरोसा कर लेते हैं तो हमारे लिए अपने विश्वास को त्यागना या उस विश्वास को धीरे धीरे मानव निर्मित सिद्धांतों के समूह में स्थानांतरित करना असंभव है, शास्त्रों में खंडन किया गया है। यह निश्चित रूप से सच है कि कोई भी प्राणी, मानव या आध्यात्मिक, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको यीशु से दूर नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि वह प्राणी आप ही हो। जब तक हम में से प्रत्येक ईश्वर पर भरोसा करके विश्वास में बने रहते हैं, हम सुरक्षित और संरक्षित हैं। गलत व्यवहार, पाप करना हमारे विश्वास को त्यागना नहीं है, यह दूर हो जाना नहीं है, और यह वह नहीं है जो इन नया नियम पदों में व्यक्त किया जा रहा है जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसलिए आज यहां से यह सोचकर मत निकलिए कि अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी तो आपका उद्धार आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि अपने विश्वास को त्यागने का मतलब है कि हम अपने पिछले विश्वास को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दें कि यीशु ही प्रभु हैं। हमने अभी जो नए नियम के अंश पढ़े हैं वे संकेत देते हैं कि हम अपने विश्वास को त्यागने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं जितने हम इसे स्वीकार करने के लिए थे। ये नए नियम की चेतावनियां व्यवस्था विवरण में स्थापित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ किया है उसके बावजूद इज़राइल परमेश्वर से दूर हो गया है और इसलिए उसने उन्हें मिस्र वापस दे दिया है। अब अच्छी खबर यह है कि जो व्यक्ति छुड़ाया गया व्यवस्था विवरण में यह इज़राइल है, और जो अपने विश्वास को त्याग देता है वह अपने होश में आ सकता है, उसे वापस परमेश्वर के पास ले जाया जा सकता है, और जब वह ऐसा करता है तो वह अपने उद्धार को पुनः प्राप्त कर सकता है। हम निश्चित रूप से पुराने नियम में थोड़ी देर बाद इसराइल से संबंधित इसी बात को देखेंगे, लेकिन नए नियम में हमें प्रेरित याकूब द्वारा समझाया गया है। याकूब 5:19 है, मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाए और कोई उसे उसकी ओर फेर लाए, तुम्हें यह जानना चाहिए कि जो कोई पापी को उसके भटकते मार्ग से हटाता है वह उसे मृत्यु से बचाएगा और कई पापों को ढक देगा। यीशु के भाई याकूब कहते हैं कि अगर कोई विश्वासी भटक जाता है तो उसे मौत का खतरा है। किस तरह की मौत? जाहिर है कि अनंत काल की मौत, क्योंकि यही संदर्भ है, और क्योंकि हर कोई बचा हुआ है या बचाए न गए लोगों को एक बार अपने भौतिक शरीर को मरने के लिए नियुक्त किया जाता है। और याकूब कहता है कि अगर कोई किसी भूतपूर्व विश्वासी को विश्वास में वापस आने में मदद करता है तो वह उसे अनंत मृत्यु से बचाएगा। मैं आज यहां इस कठिन विषय पर आपके विश्वास की पुष्टि या खंडन करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि इसका उत्तर पैटर्न में निहित है।
व्यवस्था विवरण की पद 49 इज़राइल पर आने वाले श्रापों की भविष्यवाणी के साथ आगे बढ़ती है जो उनके अपरिहार्य पतन पर आते हैं। एक विदेशी राष्ट्र इज़राइल पर तेजी से, शक्ति और गति से हमला करेगा और कोई दया नहीं दिखाएगा। इज़राइलियों ने जो कुछ भी सदियों तक हासिल करने के लिए मेहनत की है
वह लगभग रातों रात मिटा दिया जाएगा। लोग अपने शहरों में बंद हो जाएंगे और भुखमरी और मौत का सामना करेंगे। ये घेराबंदी युद्ध की बात कर रहा है, जो निश्चित रूप से वही है जिसका सामना इसराइल ने बेबीलोनियों और रोमियों दोनों के खिलाफ किया था। मैं बहुत विस्तृत नहीं होना चाहता, लेकिन ये अंतिम पद काफी भयानक है, इसलिए मैं समझाता हूं कि क्या कहा जा रहा है। पद 53 नरभक्षण पर विचार करता है। कुछ लोग इतने भूखे हो जाएंगे कि वे अपने ही बच्चों को खा जाएंगे। वास्तव में पद 54 शब्दों के साथ खेल करता है और यह बताता है कि खाने वालों में सबसे ज्यादा नखरेबाज और इसराइल के कुलीन वर्ग में सबसे कुलीन व्यक्ति न केवल अपने बच्चों को खाने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा और भोजन के लिए खुश होगा, वह अपनी भूखी पत्नी के साथ भी कुछ नहीं बांटना चाहेगा। और इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए, खाने पीने में सबसे ज्यादा नखरे दिखाने वाली पत्नी और कुलीन वर्ग के लोग वास्तव में जन्म के अवशेष खाएंगे। वैसे यरूशलेम पर दो घेराबंदी के अभिलेखों में दर्ज है कि ये भयानक चीजें वास्तव में हुई थी। इस घिनौनी कल्पना के अंतिम पद बीमारी और क्षय के बारे में है, जो घेरे हुए शहर में जलाऊ लकड़ी की तरह ढेर किए गए हजारों शवों के परिणाम स्वरूप आते हैं। पद 68 में इसराइल के छुटकारे का उल्टा पूरा हो गया है। प्रभु बचे हुए लोगों को रूपकात्मक रूप से मिस्र वापस भेज देंगे। अतीत में मिस्र के अधिपतियों ने इसराइल को दास के रूप में स्वीकार किया और कम से कम उन्हें निर्वाह के लिए जीविका प्रदान की, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि इस बार मिस्र उन्हें दास के रूप में भी स्वीकार नहीं करेगा। वे इतने तिरस्कृत हो गए हैं। और ताकि कोई गलत फहमी न रहे, अध्याय 28 के अंतिम शब्द पुष्टि करते हैं कि होरेब सिनाई का दूसरा नाम और मोआब में दी गई वाचा एक ही वाचा है, इसलिए इसराइलियों को भ्रमित नहीं होना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि चीजें बदल गई हैं। मैं आज के लिए इस विचार के साथ समाप्त करूंगा। जिस तरह मूसा की वाचा की शर्तें सिनाई और मोआब के बीच नहीं बदली, उसी तरह मोआब और कलवरी के बीच भी नहीं बदली। परमेश्वर ने सिनाई में हमेशा के लिए वाचा नहीं दी, उसे रद्द नहीं किया, और मोआब में एक नई हमेशा के लिए वाचा नहीं दी। न ही उसने हमें वह दिया जिसे आम तौर पर नई वाचा कहा जाता है और पिछली वाचा को रद्द कर दिया। मैं यह कैसे जान सकता हूं? मसीहा ऐसा कहता है। मत्ती 5:17-19, यह मत समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूं। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा न हो जाए नहीं टलेगा। इसलिए जो भी इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा और ऐसी ही शिक्षा दूसरों को देगा, वह परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा। परंतु जो उनका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा।